शांति। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के इस महान ईश्वरीय कार्य में अपने तन मन धन से संपूर्ण सहयोग देने वाली विशेष महान आत्मा आदरणीय गोपी भाई जी आज हम सभी के बीच पहुंचे हुए हैं। मैं आपका यहाँ आगमन पर स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 1968 से इस ईश्वरीय रूहानी कारवा में जुड़े हुए हैं और आप पिछले लगभग 31 वर्षों से इस ईश्वरीय महायज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप पांडव भवन में जो यहाँ का डीजल स्टोर है उसको संभालते हैं और हम देखते हैं कि मधुबन निवासी आत्माओं की जो मुख्य विशेषता है त्याग तपस्या और सेवा, उस विशेषता को अपने जीवन में लाकर उस विशेषता के माध्यम से अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देने वाली आप विशेष आत्मा हैं। आपकी विशेष रुचि ज्ञान और योग में है। हमेशा आप ज्ञान और योग में मस्त रहते हैं। ऐसी विशेष आत्मा हम सभी के बीच पधारी हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप अपने दीर्घकालीन अनुभवों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखेंगे, जिनके माध्यम से हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी विशेष प्रेरणा देने वाली बातें हम सभी को मिलेंगी जो हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक होंगी। आदरणीय गोपी भाई जी, ओम शांति। गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपी कैसे गोपी भाई से पहला प्रश्न है, माइक पकड़ी है बस। आप ज्ञान में कैसे आए और कब आए संक्षिप्त में बताइए।
ओम शांति। पहले आप सबका धन्यवाद, आपने अपनी महफिल में हमें शेयर कराने का जब मौका दिया है। बात है कि क्या प्रश्न है, ज्ञान में कैसे आए। वैसे हमारे लौकिक में परिवार में जो ना आध्यात्म मतलब एक भक्ति की भावना बहुत थी और हमारे माँ बाप भी हमको वही सिखाया है और हम जो है ना श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। तो मेरे बड़े भाई साहब ज्ञान में चलते थे तो मैं पढ़ता था तो वो लिखते रहते थे क्योंकि हमें शिव बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो वो कहते थे कि भगवान शिव है और माउंट आबू में एक बुजुर्ग है वो श्री कृष्ण बनेंगे और एक कन्या है वो राधा बनेंगे। मैं कहता था कोई व्यक्ति भी राधा कृष्ण बन सकता है हा? तो मैं कहता था आपकी बात मेरी समझ नहीं आती, हम तो भगवान समझते हैं, भगवान कोई श्री कृष्ण जो है ना कोई व्यक्ति कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन चलता था। तो इनके पास जो है ना मैंने पढ़ाई पूरी करके इनके पास आया तो मैंने कहा भाई साहब जहाँ जाया करते थे वो मुझे बताओ ना, आप मुझे लेटर लिखते थे क्योंकि वो कई जगह उनके ट्रांसफर हुई तो उनका कट हो गया। तो उसने टाल मटोल कर दिया, उनको पता था कि ये इसकी बुद्धि में बात बैठ गए तो छोड़ने वाला नहीं, जिस बात में उसको संकल्प आ जाए तो वो पक्का करता है। तो कुदरती जो है ना शिवरात्रि के दिन थे तो पहले क्या होता था कि पद यात्रा मतलब है कि सब प्रभात फेरी निकलती थी, भगवान के भंडारे होते थे, गीत गाते थे ऐसे। तो बाबा ने खास कहा था कि बच्चे हमारे जो राज दीदी को कि जलंधर में शिविर, क्योंकि बहुत वहां पर जो है मीडिया है पूरे पंजाब में जो है ना, वो मेन मीडिया जलंधर में है, तो कहा कि वहां प्रोग्राम करो बहुत बड़ा, और टॉपिक हो गीता का भगवान। तो सभी मोस्टली जो है ना मुख्य मुख्य भाई बहने जो है पंजाब से आए हुए थे। तो वो जब प्रभात फेरी निकल रही थी तो भाई साहब ने कहा जो तो संकल्प कर रहा था ना वही आए हैं, तो नीचे से पैम्फलेट लाया। तो 3 दिन का प्रोग्राम था, तो मैंने देखा तो उसमें गीता के ऊपर टॉपिक था, तो गीता में पढ़ता था उसमें था कि तो बाकी सब बातें मुझे अच्छी लगी, परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, शिव है। अच्छा, मेरे अंदर तो बड़ी हलचल हो गई इस बात। फिर मैं अपने आप को समझाता था कि बाकी सब बातें अच्छी हैं, एक बात अच्छी नहीं लगी है तो छोड़ो ना उसको, यानी अपने आप को समझाता, क्योंकि दूसरों को समझाना सहज होता है, अपने आप को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं उसको समझाता रहा। फिर जो है ना 3 दिन वो प्रोग्राम देखा, तो उसके बाद जो है ना 7 दिन का सेंटर में गया मैं, लास्ट दिन उस दिन जो शिवरात्रि थी, तो बाकी तो सभी चले गए थे अपने, क्योंकि शिवरात्रि में अपने अपने सेंटरों पर, तो सेंटर में वहां पर पहले प्रवचन हुआ, मैं भी था, भाई साहब भी थे। तो जब जाने लगे तो मैं भी उठने लगा, तो भाई साहब ने इशारा कहा कि बैठो अभी भोग लगेगा, बैठा। तो भोग पहले क्या, 10 बजे के बाद भोग शुरू हुआ, तो पूरी रात जो है ना वो भोग लगता था। भोग क्या है, उसमें रास भी करता था शुरू शुरू में, क्योंकि बाबा ने पक्के कैसे किए कि इतने मतलब देश निहारे हो जाते थे, भाई बहने सब मिलकर के जो ना वो रास करते थे। मैं साक्षी होकर देखता रहा, मैं सोचता ये कैसा ज्ञान, यहाँ पर तो सब नाचते भी है, है? अच्छा, तो खैर, अच्छा उसके बाद जो ना भोग लगा, तो पहले वो बहन फुल ट्रांस में जाते थे पहले, क्योंकि अभी तो बाबा ने जब हलचल हुआ, कोई कहता मेरे में मम्मा है, कोई मेरे बाबा है, तो वो जो है ना बाबा ने वो ड्रॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो पहले वो बहन फुल ट्रांस में जाती थी, तो सब जो है ना एक एक करके वो बहन जी के आगे आते थे, बाबा के आगे, और दृष्टि देता था बाबा, एक वरदान भी देता था, और फिर उसको फूल भी देता था, फल भी देता था। तो लास्ट में मेरी बारी आई, तो मुझे तो पता नहीं, अब मैं गया तो मैं दिल में सोचा हूँ कि ये बहन सोच रही होगी कि ये भाई नया कहाँ से आ गया है। मैं अपने हिसाब से मैं ऐसा देखूँ फिर गर्दन नीचे कर दूँ, तो वो दृष्टि देते रहे काफी समय, फिर मुझे जो है ना फल दिया, उसके बाद मुझे फूल ने दिया, पूरा ये हार दिया। अच्छा, मैं सोचा तो मैंने जो ले करके हार स्टेज में ही रख दिया, मैं दिल में सोचा कि मैं इस योग्य तो है ही नहीं है, तो मुझे हार दे दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना 7 दिन का कोर्स करने लगा, तो इतने बड़े प्रोग्राम, उसमें जो है ना एरोप्लेन से भी पत्र गिराए गए थे, और मैं अकेला निकला। अच्छा, मैं 7 दिन का कोर्स किया, तो मैं बहनों से इतना मतलब रह के संकोच करता था, मैंने ये नहीं बहन जी कोर्स कराया, मैं गर्दन नीचे करके सुनता रहता था। तो जब कोर्स पूरा, बहन जी ने कहना कि अगले दिन तब मैं दूसरा लेसन दूंगा, जब आप लेसन को पूरा जो है ना मुझे सुनाएंगे। तो मैं सारा दिन मेरा विचार सागर मंथन चलता रहता था, तो मैं उतना उससे भी ज्यादा सुना देता था, है बहन जी को, बहन जी मुस्कराते थे कितना दिमाग है ये मेरे, एक एक बात इसने। तो उसके बाद 7 दिन का कोर्स हुआ, तो हमारे जो बड़े भाई है ना उसको मोह जागृत हो गया, उसने कहा कि भाई 7 दिन का कोर्स हुआ अब नहीं जाना वहाँ। मैंने कहा क्यों नहीं जाना, ये नहीं पूछ भाई, जाना ही नहीं वहाँ। मैंने कहा अच्छा, असली ज्ञान तो वहाँ होता है क्लास में, ये तो मोटा चकचकाई ज्ञान देते हैं, असली ज्ञान तो वहाँ होता है। तो कहता अच्छा ठीक है, एक दिन जाओ। मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुरली वगैरह वगैरह, तो मैं जाता रहा, तो वो रोका, मैं रोका नहीं, उसकी पेश चली नहीं। उसके बाद फिर उसने फादर को बुला दिया, जो फादर को बुलाया तो मैं काम करके जाता था, कुछ दिन में जल्दी आ गया, तो बड़ा खुश। मैंने कहा क्या बात है आज बड़े, कहते खुशी की बात है क्योंकि उसकी पेश चली नहीं है, तो उसको फादर को बुला दिया। अच्छा, तो चले चलो कमरे में, पिताजी रेस्ट कर रहे थे, तो मैं आया तो मैं देखा पिताजी, मैं कहा अच्छा तभी ये खुश आ रही है, इसे सोचा मेरे तो पेश चली नहीं, अब पिताजी इसको रोकेंगे। तो फिर पिताजी को चरण वंदना की, हाल चाल पूछा, फिर मैं आ गया। तो फिर मैं पहले मैं क्लास दोनों टाइम करता था, तो फिर मैं आश्रम में गया, मैंने कहा बहन जी हमारे जो है ना घर से भाई साहब ने फादर को बुला लिया, तो वो तो बहुत गर्म स्वभाव के हैं, इसलिए मैं एक टाइम क्लास में करूंगा यानी शाम पे। मैंने कहा अच्छा। तो एक दिन मैं उनको सारा दिन घुमाता रहता था, भाई साहब ने तो फुल टाइट की थी उनकी जो है ना, उल्टा जो है ना चाबी घुमाई हुई थी। तो घुमाते घुमाते एक दिन मैं सेंटर में ले गया उनको, तो उस समझ गया कि भाई ये अपने सेंटर में ले गया। तो बहन जी बैठे हैं और बहन जी बात करने लगे ज्ञान का, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो नगेटिव बैठा हुआ था। तो वो बहस करने लगे, तो मैंने बहन जी को इशारा किया, बहन जी ये सुनने वाले नहीं है, इनकी बुद्धि में फुल नेगेटिव है, इसलिए इनको टोली दे के विदाई करो। तो आ गए। अच्छा, मैं डेली जो है ना, पहले क्लास योग जो है ना सेंटर में हुआ करता था, 4 से 5 बजे योग होता था, 5 से जो है ना 6 बजे, 6 बजे क्लास पूरी हो जाती थी। तो मैं 3 बजे उठता था नहा धो करके, और 4 बजे आधा घंटा लगता था सेंटर में, 4 बजे पहुंच जाता था योग करने के बाद, फिर क्लास 6 बजे पूरी होगी। तो पिताजी ने सोचा इसको आते हुए तो देखते हैं ये जाता कब है। एक दिन सारी रात वो सोए नहीं। तो मैं वैसे ना उठा ना धो करके, जैसे मैं चिटकी खोलने का टक हुआ ना, तो उसने मुझे बुला लिया। अब मैं सोचा आज तो बस फंस गया, आज तो बात पिताजी की मेरी बहस होने लगी ज्ञान पे। काफी बहस हुई कि हमारा जो पर्दाता था उसका एक कमरा बनाया था, वहाँ सभी देवी देवताओं के फोटो भी थे और सभी जो भक्ति के जो भी चिमटा खड़ताल ढोल के सब रखे थे। वो कहते हैं कि अगर आपको भक्ति बनना है तो वहाँ पर दादा का जो है ना, तेरे दादा का जो वो है, तो वो वहाँ पर भक्ति कर। मैंने कहा मैं वही हूँ। मैंने कहा वो तो और भी गुस्सा हो गए। मैं क्या आप इस बात को नहीं समझेगा, मैं वही हूँ। मैंने कहा बा जो तो बहुत गर्म हो गए। अच्छा, फिर लास्ट जो है ना बात यहाँ स्टॉप हुई। उसने कहा अगर तू वहाँ जाएगा तो तू, मैं तेरा बाप नहीं और तू मेरा बेटा नहीं। मैंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। चला गया है? सेंटर में चला गया। फिर तो बहन जी ने देखा, बहन जी ने कहा भी क्या बात है, चुप चुप है आज। तो मेरे ना तो फिर जो है ना सेंटर से जाने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे बैठा हुआ था तो बहन जी चुप, मैं चुप था। बहन ने कहा क्या हुआ था, तो बड़ा चुप है। पहले शुरू में नशा होता ना, क्वेश्चन आंसर का है, ज्ञानियों का नशा होता है, क्योंकि नई नई चीज होती है ना, नई चीज से तो ज्यादा प्यार होता है। तो पिताजी ने कहा क्या बात है, तो आज तो चुप के बैठा हुआ। मैंने कहा बहन जी मेरे जो है ना सारा दिन में जो है ना वो था ना जो वो गुबार, तो वो निकल गया, सारा आंसू निकल गए। अच्छा, तो भाई साहब इस बीच में पहले भाई साहब ने क्या किया कि मैं जब आया तो उसने कहा कि भाई, मैंने कहा चलो भोजन, शाम को क्लास की है, उसने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो भूख लगी भोजन करें। कहता पहले मेरे से एक वादा कर। मैंने कहा क्या, तू वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा ये क्या क्या वादा है। कहता नहीं तो ये पक्का कर। वो ऐसा रोने लगा जैसे छोटा बच्चा रोता, माया का रूप देखो। अच्छा, कहता अगर तू जाएगा तो सामने बस स्टैंड तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो डर गया, मैंने वायदा कर लिया ठीक नहीं जाऊंगा। तो सारा दिन जो नहीं मेरी रात, सारी रात नींद ही नहीं आई मुझे। मैंने कहा बाबा की क्या वायदा कर दिया ऐसे। तो मैंने क्या किया, नहा धो करके ना ताला चाबी ली और बाहर का ताला लगा दिया, सेंटर में चला गया। तो बहन जी ने कहा कि भाई क्या बात, वहां पर जो है ना, फिर बहन का बहन जी ऐसी सी बात आई हुआ है। कहता तो इतने में डर गया, ये तो माया का रूप है, ये तो कुछ भी नहीं, माया तो बहुत आएगी। अच्छा, फिर भी बहन जी ने जो मुख्य भाई था उसको भेजा जाके उसको समझा गया। हो तो ऊपर रहते थे तो आगे आगे भाई साहब चल रहे थे, पीछे कहता तो ताला लगा। मैंने कहा चाबी मेरे पास। कहता तू अंदर रख दे। मैंने कहा कहीं मर जाता तो और ही मुसीबत होती है। अच्छा, तो जैसे मैं जो है ना आया तो वो जो है ना खोला तो वो बैठा हुआ था। सोचा कि रात को वायदा क्या, फिर भी चला गया। अच्छा, फिर उसने कहा उमेश सिंह, उसका नाम उमेश सिंह। कहता उमेश सिंह क्या बात है, तूने इसको क्यों रोक रहा है। कहते नहीं जी ऐसा, ये घर बार छोड़ देगा, ये ऐसो कहे जो भरा हुआ सब उगला। उन्हें सुना, उन्होंने कहा देखो मेरी 2 फैक्ट्री हैं, मैं घर बार भी संभालता हूँ। और वो जो सेंटर का मुख्य भाई था तो कहते मैंने सेंटर में भी जो मेरे से होता वो भी मैं पूरा सहयोग देता। तू कैसे कहता इसको। फिर उसने पिताजी को बुलाया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना जो मैं फिर इन्होंने जो है 3 दिन तक मेरे से बात ही नहीं की। तो मैं आता था तो पहले तो जो है ना ये गैस होते थे, स्टोव जलाया, 2 मोटी मोटी रोटी बनाता था, अचार लेके चला जाता, वहाँ भी नहीं खाता था, वहीं ड्यूटी पर खाता था। अच्छा, पिताजी ने सोचा है ये अब तो जो है ना ये बात बिगड़ गई, क्या करूँ। कि तीसरे दिन कहने लगे बेटा अच्छा तू समझदार हो गया ऐसा अब क्या कहें। मैं कह भाई तीन दिन नहीं समझदार हो गया है। अच्छा अब उनके पास एक जो है ना एक अभी भी एक जो है ना पत्ता था उनके पास। तो मेरा क्या है कि बचपन में हमारे जो चाची की जो माँ थी ना वो बहुत प्यार करती थी मुझे। तो वो उसने जो है ना वहाँ मेरी किसी जो है ना सगाई करवा दी पिताजी को कह के। अच्छा उन्हें कहा अच्छा बेटा भाई साहब की शादी होने वाली थी दो महीने बाद। कहता अच्छा एक बात मैं आपसे कहनी है। मैंने कहा बताइए। कहता भाई की शादी हो रही है। मैंने कहा हम बता रहे थे। कहता फिर मैं सोचता कि दोनों की शादी कर दे। मैंने कहा ऐसा है कि मैं शादी जरूर करूंगा। मैं ये पक्का मेरे से जो है ना आप लिख के ले लो परंतु दो साल के बाद। कहता तो मुकर गया। मैं बोल रहा ना लिख के ले लो मेरे से। अच्छा तो भाई साहब की जब शादी हुई तो फिर उनका जो ससुर था ना वो दो धार्मिक ख्याल का था। तो उसने कहा कि जो तुम्हारा बेटा जो भगत है उसको जरूर बुलाना आप। तो भाई साहब को लेटर आया है। तो उसने कहा भी आपको शादी में चलना। मैंने कहा मैं किस ले जाऊँ शादी आपकी है मैं किस ले जाऊँ। कहते नहीं आपको जरूर चलना है। कहते नहीं मैंने चलना। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। कहता अच्छा मैं कर लूंगा। अच्छा मेरे पास पैसे थे मैंने ऐसे टालने की बहुत कोशिश की। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलो इसी में कल्याण होगा वहाँ से हो जाएगी। तो मैं जो पैसे थे ना मैं लेटे से ले आया जी और कैलेंडर ले आया। देखा उसने गुस्सा तो आया तो बोल नहीं पाया चुप रहा। तो गए जी वहाँ। तो जब घर में गए तो पूरे गांव में क्या होता था पूरे गांव वालों को खाना खिलाते थे। उस सारा गांव भी आया था हमारे सारे रिश्तेदार आए थे। मैंने वो कैलेंडर टांग दिए। हमारा वो दूर दराज का चाचा था। कहता है बेटा मैंने सुना तो बहुत भगत बहुत बड़ा भगत है क्या तेरे पास सुना दे अभी। मैं कहा ठीक है। बस दो घंटे तक क्या बोला मैंने मजा आ गया। और सब जो हमारा जो है ना जो पुरोहित था ना वो बड़ा प्रभावित हुआ। और आपको पता है पुरोहित की बात जो है ना लोग से मान। तो उसने कहा हमारे पिताजी को भाई ये इतना अच्छा ज्ञान है इसके पास इससे तो मेरी आंखें भी खोल दी इसलिए इसको कभी रोकना नहीं। उसको तो पता नहीं रोकता है। अच्छा वो कहता अच्छा फिर उसकी जो है ना ट्यूबलाइट जल लीजिए फिर तो बड़ा खुश हो गया। अच्छा फिर उसके बाद वहां पर जाएंगे खाने की भी समस्या थी तो मैं अपने हाथ से बनाता वहाँ खाना। हालांकि अभी दो महीने का मैं माँ का हाथ का किसी काम में अपने आप बनाता था। अच्छा जब शादी में गए तो वहाँ पर मैंने रात को खाया नहीं दूध पिया। तो उसने कहा उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो चूल्हा जो है ना कोई कन्या साफ करके आए वहाँ पर रख दे उसका जो अपने आप बनाएगा। तो ऐसा किया। तो मैं बना रहा था वहाँ पर हलवा रखा देसी घी रखा था और सूजी वगैरह हलवा बनाने के लिए और पता नहीं मैं बना रहा था। वो उसी एरिया का एक बहुत बड़ा महात्मा था तो आया तो देख रहा है ये क्या कर रहा है। कहता बेटा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये भोजन बन रहा है। कहता किसका। मैंने कहा मेरा। तो कहता भोजन तो वहाँ बन रहा है। मैंने कहा वो मुझे पता है परंतु मेरा भोजन नहीं बन रहा। कहता कैसे। मैंने कहा देखो आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी है लिखा है ना जैसा अन्न वैसा मन। कहता हाँ ठीक है। और यदि जैसा संग वैसा रंग। कहता हाँ भी ठीक है। और जैसे पानी वैसे पानी। कहता हाँ भी ठीक है। मैंने कहा हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर ये सिखलाया जाता है कि बुरों का संग न करो और अपने जो है ना भोजन अपने हाथ से बनाओ। मैंने कहा देखो वहाँ भोजन बन रहा है वो किस संकल्प से बन रहा है। लोग तो उसी मस्ती में है तो उसका असर तो होगा ना मन पर। कहता हाँ। कहता ये बात हमने सोची नहीं। तो मैंने कहा भगवान वो ज्ञान सुनाता है जो मनुष्य नहीं कर पाते हैं न उनके सोच से बाहर होती है। तो कहता अच्छा ठीक है अभी जो है ना सब बैठेंगे आप सुनाओ जो है। फिर वहां भी मैंने खूब ज्ञान सुना उसको बहुत अच्छा लगा और जो भी लिटरेचर थे सब मैंने बांटा। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं आ गया। मुझे पता नहीं भाभी कौन है क्या है मैं तो आ गया वापस। अच्छा उसके बाद जो है ना जब मैं गया मैं भोग लगा के गया था तो बाबा ने कहा कि बच्चे पेपर हाल में जा रहा है अब देखेंगे पास हो के आता कि नहीं। अच्छा जिस दिन मैं आया था शाम को क्लास में गया तो कुदरत किसी का भोग था तो बहन ध्यान में गया गई तो फिर मुझे इशारा किया तो मैं गया। तो बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि भी दी फूल भी दिया फल भी दिया। और फिर उस संदेशी ने कहा बाबा ने कहा बेटा जो है ना ये जो है ना बच्चा जो है ना पेपर हाल से पास हो गया। तो कहने का मतलब है कि पेपर तो आता ही है तो पेपर आना भी चाहिए। क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पेपर नहीं होगा। स्कूल में पेपर होता तो ये हम कितनी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पेपर तो होगा ना, तो ये पेपर तो आता है। उसको जो है ना किस ढंग से हम उसको हल करना वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है।
तो सगाई का क्या हुआ?
हाँ फिर सगाई का, हाँ फिर पिताजी आया 2 साल के बाद। अच्छा तो उसने कहा बेटा शादी? मैंने कहा हाँ पक्का करूंगा, पर मेरी एक बात सुन लो। कहते क्या? मैंने कहा पहले मेरे बारे में उनको स्पष्ट बता देना कि हमारा बेटा इस ख्यालात का है, भगत बन गया। तो आप लोग भगत ही बोलते हैं सर, तो उसकी समझ में आ। मैं क्या अगर छुपाएंगे तो ये बात आपको भारी पड़ेगी, आपको फेस करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा वो समझ गए, बात तो ठीक है। तो गए जी वो बड़े खुश, हाँ जी कब मुहूर्त निकालना ये ऐसा, वो बड़े खुश है। अच्छा फिर उन्होंने कहा ये मुहूर्त भी निकलवाते हैं, पहले एक बात कहनी मैंने आपको। कहता क्या? कहता हमारा बेटा पहले जैसे नहीं रहा। कहता मतलब ये वो भगत बन गया। कहता जी फिर ऐसी शादी नहीं करनी, फिर बात खत्म हो। तो कहने का मतलब है कि देखो कोई बात होती है आ उसमें जब संघर्ष होता है ना, वहाँ पर आपस में मतभेद हो जाते हैं, दुश्मनी हो जाए, माँ बाप होता है ना उनको भी दुख होता है, तो अपने आप ही हल हो गया, खुश हो गए, जान छूटी लाखों पाए।
प्रश्न है मधुबन में आने के बाद आपने कौन से संस्कारों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ किया और क्या पुरुषार्थ किया?
एक्चुअल क्या है, हम राज जो है ना राजपूत घराने से बिलोंग करते हैं, तो राजपूतों को नशा बहुत होता है, गुप्त नशा। हाँ तो राजपूतों को जो नशा गुप्त पड़ा होता है कि हम राजपूत हैं, तो ये संस्कार आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आड़े आया मेरे हैं, हर समय जो है वो फट हो याद आ जाता। तो इस संस्कार को मैंने फिर बहुत चक किया, भाई ये मेरे जो है ना आध्यात्मिक मार्ग में बहुत विघ्न है। ये रोज क्या करता है, अपने दृढ़ संकल्प रूपी जो हथौड़ा है ना रोज मारता रहता था, है रोज जो है ना अपने आप को ठोकता रहता था अंदर ही अंदर, है ना। अच्छा क्योंकि इस ये जो है ना ग्रेनेड का पत्थर है, बहुत स्ट्रांग है ये, और जितना जितना ये टूटता रहता है ना, और इसके पीछे बहुत खजाना जो है ना, पीछे इसके पीछे खजाना है। तो जितना, तो कहने का मतलब जितना हम देह अभिमान तोड़ते जाते हैं ना, तो स्वाभाविक हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, हर एक के प्रति सुभावना भी होती है हमारे, और ये भी होता है कि हमारा परिवार, जब अभिमान होता तो कोई किसी को नहीं समझता, कोई अच्छी बात भी कहेगा उसको कहता है ये कौन है मुझे समझाने वाला, ही है। तो ये जो है ना इसको तोड़, बहुत मेहनत की है इसको मैंने कम करने के लिए।
चौथा प्रश्न तो आपने दूसरे में बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अलौकिक परिवार में एडजस्ट होने में कौन सी बातों का आप ध्यान रखते हैं?
हाँ ये है। पहले उस ऊपर क्या प्रश्न था?
उत्तर बताया वही प्रश्न। पहले था मधुबन में आने के बाद आपने कौन से संस्कारों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ किया, अभी है प्रश्न ज्ञान में आने के बाद आपको लौकिक परिवार से अलौकिक परिवार में एडजस्ट होने में कौन सी बातों का आप ध्यान रखते हैं?
अलौकिक परिवार में एडजस्ट होने, क्योंकि हमारे हरेक का स्वभाव संस्कार तो आड़े आता है ना, हरेक का, क्योंकि हिसाब किताब ही होता है हरेक का, और वो आड़े आता है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये हमारा परिवार है, है? और इस परिवार से तो हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, लौकिक से तो एक ही जन्म का है, इसलिए मैं सोचता है कि कैसे भी है तो मेरा भाई है ना, है कि नहीं। चलो लौकिक मैं सोचता है कि मैं लौकिक से कंपैरिजन करता था, अगर लौकिक भाई होता या बहन होता है अगर मुझे ऐसा कहता ऐसा, तो फिर मैं क्या करता, तो उसका अपने आप ही वो जवाब मिल जाता था। इसलिए मैं सोचता ये हमारा परिवार है, बाबा ने इतना बड़ा परिवार बिछड़ा हुआ है, हम इकट्ठे हुए हैं, भक्ति में तो हम एक दूसरे की महिमा करते हैं, अब चेतन में हम एक दूसरे की बुराई क्यों करें। तो ये ऐसा ना विचार अपने आप को समझाता।
नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा स्थान पर कौन सी बातें आती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, और उस समय आपके मन में कैसी हलचल होती है, और उस हलचल से अप्रभावित रहने के लिए आप क्या प्रसाद करते हैं?
क्या था सेवा स्थान पर?
सेवा स्थान पर आपको कौन कौन सी बातें आती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, और उस समय आपके मन में कैसी हलचल होती है, और उस हलचल से अप्रभावित रहने के लिए क्या प्रसाद करते हैं?
इसमें सबसे पहली बात यह है कि मुझे जो है ना एक बात अच्छी ना, जो जुगली करते थे ना इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना, ये मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी। हमारे फादर भी ऐसा था कि हमारे फादर अगर माँ फादर को कुछ कहते थे ना ऐसा हुए, वो बिल्कुल करता, मेरे सामने ये बात करनी है तो उसको सामने लाओ, दोनों की बात सुनूंगा मैं अकेले, बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बात। तो मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। घर में कितनी कितनी बातें समा जाती हैं, तो यहाँ पर छोटी छोटी बात का हवा बना देते हैं तो वातावरण चेंज हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना मैं ये सोचता था कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा मैं सोचता चलो हरे का स्वभाव संस्कार ऐसा है, क्या करें। तो ये इसमें जो है ना एक बार क्या हुआ, एक भाई था, मैं अभी जो है ना जैसे डिपार्टमेंट अंदर ऑफिस था, तो जाना माना भाई है, कमी तो हरेक के अंदर भी होती है। अच्छा तो जैसे वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे ना, तो मैं अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं कुछ लिख रहा था। उसको तो इतनी ईर्ष्या हुई है कि हम इतने साल से हम जो है ना यहाँ सेवा कर रहे हैं और हम तो ऐसे धक्के खा रहे हैं, तो इसको तो आते ऑफिस मिल गया। उसने क्या किया कि हमारा जो बॉस है ना उसको शिकायत की कि इसको बाहर जो है ना ऑफिस बाहर इसको बैठाओ और चौकीदारी भी करेगा, ये भी सोचा। अच्छा तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि भाई अभी आपको जो है ना ऑफिस बाहर जहाँ पर ये बहु भाई का स्टोर है ना, ये आपका ऑफिस बना लो और वो अपना ले आए अंदर। अच्छा मैं नया नया था, मैं आना कहने तो की नहीं, मैंने कहा अब क्या करें है? तो मेरे दिमाग में एक बात सूझी, मैंने उस भाई को कहा भैया ऐसा है अभी आप स्टोर खाली कर दो। कहते क्यों? मैंने कहा आपका स्टोर अंदर जाएगा और मेरा ऑफिस ये बाहर आएगा। कहता है किसने कहा? मैंने कहा बॉस ने, हम दोनों का। वो तो बड़ा गुस्सा हुआ, मुझे पता ये ठीक कर सकता है। वो फटाफट गया जी बॉस के पास, उसने कहा आप कैसे कर दिया, क्योंकि उसका तो वो था ना तेल वगैरह वगैरह अंदर ले जाना बाहर करना, उसको तो मुश्किल होती थी, होगी ना। अच्छा उसने जी बड़ा गर्म होकर कहा कि आपने कैसे कर दिया, ये है सोआ ड्रिंक ऑफिस का। फिर आया तो मैंने कहा क्या हुआ जी? कहता होना क्या, जो जैसा वैसे चलेगा। मैं कहा चलो आज जान छुट्टी लाखों पर। तो कहने का मतलब बाबा कहते ना युक्ति से मुक्ति। अब वहां पर हम संघर्ष आपस में लड़ते झगड़ते तो संबंध खराब होता है, सदा के लिए पूरी होता है। जिस तरह कहते हैं ना कि जो ये गन्ना होता है ना, जहाँ गांठ होती है ना वहाँ रस नहीं होता है, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती है। तो जब गांठ पड़ जाते ना एक दूसरे के प्रति हमारी आपस में, तो फिर उसके एक दूसरे को देखेंगे तो वो गांठ सामने आ रहे आ जाते, तो खुशी गुम हो जाती है। इसलिए जो है ना मैं क्या करता हूँ, कोई बात आती है ना मैं दिल में नहीं रखता, उसी समय फिनिश करता, चलो ड्रामा में चुकता हुआ, कहते हैं भाई साहब सॉरी जो भी बात है फिनिश करो। तो उससे क्या होता है कि हम जब भी देखेंगे तो हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारे अंदर वही बात, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोई भी बात आती है ना उसको फिनिश कर दें। यही कारण आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना मेरा किसी से बैर भाव है, ना किसी से मैं दुश्मनी लेता हूँ, मैं रख ही नहीं सकता, आई बात गई फिनिश हो बस, इसलिए सदा खुश रहता हूँ मस्त रहता हूँ।
तो जो भी युक्ति चाहिए आप गुप्त से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके ब्राह्मण जीवन में कौन सी ऐसी विकटतम परिस्थिति आई जिससे आप परास्त हो गए, और परास्त होने के बाद फिर से आपने कौन सी युक्ति अपनाई जो पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर दिया?
जिस डिपार्टमेंट में आया था, जहाँ मेरा ऑफिस है ना, वो तो बिल्कुल ही मतलब स्टोर इनके पास था, स्टोर वालों के पास, तो बाहर जो है ना ये मुरमुरा है ना उसके दाग लगी रहती थी, और अंदर जो है ना सारा इंजन वायल गियर वायल बैटरी के जो है ना गाड़ी के जो बैटरी है बिल्कुल गंदा, कोई बैठ नहीं सकता था वहां पर। तो जब मैंने उसको अच्छी तरह सजाया, सफाई वगैरह की ऑफिस बनाया, तो दादी को बहुत अच्छा लगता, जो कोई भी चीज बिगड़ी उसको ठीक करता था, दादी बहुत खुश होती थी। तो एक दिन दादी हर गुरुवार को आती थी, तो उस दिन में कुदरती जो है ना मैं क्लास में चला गया था, तो मेरा था मेरा ऑफिस बंद था, दादी को पता इसने ऑफिस बनाया, तो ऐसे जाली लगी थी बाहर से, तो जैसे बच्चे नहीं देखते जाली से ये कितना, तो दादी कहते यीशु बहन को देखो इसी तरह देखो कितना पड़ गया ऑफिस बनाया देखो ये दादी खुश। अच्छा सारा अंदर सट गया, एक दिन फिर दादी ने सारा दिखाया, दादी बहुत खुश है। तो दादी कहते है यीशु दादी को कि देखो ऐसा तेरे पास भी नहीं अलमारी है जितने इसके पास अलमारी है। अच्छा तो ये हमारा पड़ोसी भी साथ में आया अंदर, अच्छा उसकी नजर पड़ेगी जी इस ऑफिस में। तो उसने कहा, उसने सोचा है कि दादी को कहने लगा, दादी मुझे इनके मीटिंग में भंडारे वालों की होती थी, तो कहता दादी मेरी एक समस्या, कहते क्या अभी जो है ना मेरा डिपार्टमेंट बढ़ता जा रहा है और अभी जो है ना ये जगह कम पड़ रही है, तो दादी कहता फिर क्या करना है, कहता मुझे स्टोर चाहिए, तो कहता स्टोर कहाँ, कहते वो गोपी वाला। तो फिर क्या हुआ, तो उस भाई ने जिसको कहा ना मैंने भाई ये आपको अंदर जाना है मुझे बाहर आना है, उसने कहा, वो भी भंडारे वाला था, उसने कहा भाई इसने आपके ऑफिस में इसकी नजर है, मैंने तो मतलब कहता ये कह रहा है मुझे ये गोपी वाला सोचा। अच्छा तो मैंने उसको कहा क्या बात भाई, जब तो ये गंदा था तब तो तेरी नजर नहीं गई, अब सफाई होगी तो आपकी नजर नहीं आप जो उसने कहा। अच्छा चुप हो। तो वो रोज जो है ना मुन्नी बहन को पुश करता रहता था। अच्छा मुन्नी बहन को क्योंकि कईयों की आदत होते है ना एक दूसरे के पीछे आगे घूमना अपनी बात मनाने के लिए, चिकड़ी चुपड़ी बातें करना, और मैं इन चीजों से दूर रहता था, तो वो दादी को पुश करती रहती थी। तो उसने किसी को नहीं छोड़ा, जो सभी बड़ी दादियों की शिकायत की, बड़े भाइयों की शिकायत की, उसकी चली नहीं। लास्ट में एक दिन जो है ना दादी भी तंग आ गई कि रोज ही शिकायत करती है ये भी जो है ना मुन्नी। तो फिर वो जो है ना हमारा जो बॉस है उसको बुलाया, कैसा है जो है ना ये उसको खाली कराओ। तो वो बॉस भी जो है ना वो भी जो है ना चाहता था खाली कर दे, ये अंदर बैठा रहता है ना अंदर अंदर, हर एक को होता है ना, उनको भी कोई ऑफिस वगैरह था नहीं। अच्छा वो आया, रात का टाइम था, कहता जी इसको दादी ने कहा इसको दे दो, मैं कह दे दो। मैंने कहा मुझे क्या, मैं बाहर रोड पर रख दूंगा जो भी सामान है। तो मैंने कोई बहस नहीं किया। तो उसने वो भी वहां खड़ा था जब दादी ने बात की है ना, वो उधर ही बैठा होगा। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, वो सारा नाम चला गया, कहते दादी यस कर दिया, कहते तो स्टोर की बात चले। तो बाहर बैठा था प्रकाश, तो उसने कहा दादी ये कौन सी स्टोर की बात चल रही है, दादी का जो ड्राइवर है ना जो नीचे दादी को, कहता वो उस स्टोर की बात चल रही है। तो उसने कहा ये स्टोर खाली नहीं होगा, कहते मेरे पास 7 गाड़ियां उसका सारा सामान रखा, वो कहाँ रखूंगा मैं। तो वो जो है ना बात हुई, दादी चुप हो गई। अब मुझे तो पता नहीं इसने ऐसे ये चेंज कर दिया, उसने थोड़ा बहुत जो सामान भर था ना जब वो भी अंदर भर दिया, मैं समझा नहीं क्या। अच्छा तो कहने का मतलब यह है कि जब हम सरेंडर हो जाते हैं ना बाबा के आगे, फिर मैंने सोचा है ये कह रहा है, मैं ये सोचा जब मैं आया तब तो मैंने सोचा नहीं कि स्टोर में रहूंगा, ये सब मेरे छोड़ो जो भी होगा कल्याणकारी होगा छोड़ो, रोज रोज का झंझट मुक जाए, जो भी होगा देखे जाएगा बाबा बैठा हुआ। तो कहने का जब हम सरेंडर हो जाते ना बाबा के आगे तो बाबा फिर मदद करता है। जो उसने बीच में क्या क्या एक दिन जो है ना मृत्युंजय का चीजा वगैरह खिलाया, तो कहा कि जो है ना इसको उसको कहो इसको सहयोग दो थोड़ा जगह दो। उसने कहा भैया इसका जो है ना डिपार्टमेंट बढ़ रहा है तो आप थोड़ा सहयोग दो। मैं कि क्या सहयोग दे, उसको एडजस्ट कर दो कैसे। मैंने कहा अच्छा एक बात कहता हूँ, मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ बाकी बॉस फैसला करेगा, ये मुझे बरांडा दे दे और ले ले अंदर। कहता ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा पूछ लो उसको, मैं क्या रोज हो के झंझट से इतने में काम चलाओ। अच्छा उसने कहा ये मैं शाम को बताऊंगा। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, कहता नहीं। मैंने कहा रोज रोज का झंझट ये उठाते हैं, ये अभी जब मैंने इतना बड़ा स्टोर दे दिया आप झगड़ा किस बात का। कहता नहीं मुझे आधा बरांडा भी चाहिए। अब मैंने कहा अगर आप मेरी जगह होते, अगर मैं आपको ऐसा करता आप कैसा लगता। अच्छा तो वो बरांडा किस लिए मांग रहा था, वो सोचता अंदर मैं ऑफिस में बैठूंगा और बाहर जो है ना ये मैदा है ना जो छानेंगे तो ये फांकता रहेगा वो, है ना, तो इसलिए मैं अंदर बैठा रहता हूँ। तो बाबा तो देखता है ना मैंने इतना ऑफर कर दिया, इतना बड़ा स्टोर है और ये बरांडा है कि आने जाने का रास्ता कुछ भी नहीं। फिर मैंने कहा चलो इतने में जान छूटती है कोई, तो जो है ना वो भी नहीं माना। तो मैंने कहा बच्चों अब तो तुझे ये ना सुई नोक जैसी जगह मिलने वाली नहीं है, तो कुछ भी कर ले।
नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबन में रहते समय आपको बहुत सारे वृष्ट भाई बहनों और दादियों के अंग संग रहने का सौभाग्य मिला, तो आपने उनके अंग संग रहकर स्वयं में कौन से गुणों की धारणा की जो आप में पहले नहीं थी।
देखो हम बड़ों को देखते हैं ना, तो ये नहीं कि हमारे आगे पेपर आता है, बड़ों के आगे नहीं आता, सबके आगे आता है। परंतु तो जो जितना बड़ा पहलवान होता है ना, तो उसके आगे उतना उसके बराबर का पहलवान उसके सामने बैठाते हैं। तो दादियों के आगे पेपर आता है, हमारे आगे पेपर आता है। तो हमने देखा दादियां कैसे सॉल्व करती हैं। दादी देखो, कोई सारा विश्व दादियों के आगे समाचार आता है, तो कई बार मैं देखता था को सेंट्रम का दो पार्टी आई हुई है दादी के आगे, एक दूसरों का विरोध करना। तो दादी एकदम बात नहीं करते थे, दादी एक हफ्ते बाद बात करते थे और देखते रहते थे इसका जो है ना ये नरम हुआ कि नहीं, अभी ज्ञान योग करो उसके बाद दादी बात करेगी। एक हफ्ते के बाद थोड़ा ठंडा तो हो ही जाता है आदमी, तो फिर वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह कोई भी बात आती है ना, उतावले नहीं होना चाहिए हमको ना, धैर्यता, देखो साक्षी हो के उसमें साक्षी हो जाओ उसमें, तो उसका हल सोलह। जब उतावला होते हैं ना, कहते हैं ना उतावला जो है ना वो राक्षसों का होता उतावला, और जो जो देवता है वो शांति होके जो है ना हर चीज को सॉल्व करते हैं। इसलिए हम बड़ों से ये सीखा, कोई भी बात यह शांत सरे जो ना साक्षी हो जाओ और उसको देखते रहो ये कैसा होता, अपने आप ही हल हो जाता।
आप योग में बाबा से क्या क्या बातें करते हैं और कौन कौन से संबंध से बाबा को याद करते हैं?
बाबा से तो सभी बातें करते हैं, दिल की बात बाबा से तो सर्व संबंध है। कभी हम फ्रेंडशिप से बात करेंगे, कभी हम जीवन साथी रूप में बात करेंगे, कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सखा के रूप में ये बातें करते हैं। और आगे अगला क्या था?
हाँ,
योग में क्या
और बाबा क्या बातें करते आपसे?
बाबा कहता है कोई बात कहता हल हो जाता है, यानी मतलब बाबा अंदर से धैर्य देता था, कोई बात नहीं बेटा तुम चलता रहे तो बस कोई गलत सब हल हो जाएगा।
आपने कोई साक्षात्कार किया है या योग में जो विशेष अनुभूति की है उस पर प्रकाश डालिए?
हम जब मैंने जब मधुबन में आया तो मैंने बाबा को ये कहा कि बाबा मैं इस मधुबन में सभी डिपार्टमेंटों का अनुभव करना। तो जो पद यात्रा के बाद जब यहाँ आए ना, तो दादी जब पहली बार जो मधुबन में आया ना मैं, तो मैं जो है ना योग के बाद जो है ना ये यशपाल भाई वो आटा गूंथता था, तो मैं आटा गूंथने चला जाता था, उसके बाद मैं मक्खन में निकालता था, फिर मैं रोटी भी सेकता था। तो दादियां तो देखते रहते थे ना, हमको तो पता नहीं, हम तो अपने बोले स्वभाव से सेवा का भावना होती है। अच्छा, तो दादी ने क्या किया, पूछा मुझे कि आप कब जाना है? मैंने कहा दादी कल जाना है। कहता अच्छा कल जाना? मैं कहा दादी अच्छा तो फिर कल जाना? मैं समझा नहीं। मैं रास्ते में सोचा है, जब मैंने एक बार दादी को बोल दिया है दादी मुझे जाना, तो दादी ने तीन बार जो पूछा ये क्या कारण है, तो मैं तो समझा नहीं। तो जब यहाँ मैं समर्पण हुआ ना 85 के बाद, 17 साल के बाद जैसे, तो भोली दादी कहती है बुद्धू तुझे तो पहली बार जब तू आया तभी दादी जो है ना आप दीदी दादी आपको तभी जो है ना समर्पण करना चाहते थे, परंतु दादी ने जो ना आपके टीचरों को कई बार कहा, परंतु आपके टीचर मना कर देते थे इसका बंधन है। तो दादी ने समझ सकते थे कि जब बंधन है ये सेंटर में क्यों रहता है ना। तो जो है ना कहने का मतलब बड़े कोई भी बात करते उसके नाराज होता है, तो इसलिए पहली बार जो है ना मुझे समर्पण का जो है ना दादी रखना चाहती थी, परंतु जो ड्रामा में ये भी बाबा ने अनुभव कराना होगा। फिर योग की बात है, हम जो है ना नीचे सब जो संग मैंने कई डिपार्टमेंट, तो मुझे दादी ने संगम भवन में भेजा, तो वहां पर जो है ना 18-18 घंटा काम करते थे, क्योंकि सारा कारोबार होता, ये शांतिवन तो था ही नहीं। रात को 12-1 बजे 2 बजे भी पार्टियां आती थी, उनको खिलाने का सुलाने का सारा, तो सवेरे फिर जल्दी उठ जाना क्योंकि पार्टियां आए थे। तो 18 जब मैं नीचे से ऊपर आया तो मेरी ड्यूटी जो है ना वॉशिंग डिपार्टमेंट में लगी, तो 7 साल मैंने वॉशिंग डिपार्टमेंट में वो किया। जब मैं यहाँ देखा यहाँ तो कुछ भी काम नहीं, सिर्फ 6 घंटा काम। मैंने कहा यहाँ जिसने 18-18 घंटा काम किया हो तो उसको 6 घंटा कुछ नहीं लगता। तो फिर मैंने एक चार्ट बनाया जो 8 घंटा मुझे योग में रहने का पोशाक। तो जो है ना सवेरे में 2 बजे उठ जाता था और यहाँ पर ओम शांति भवन का जो है ना ये है ना बाबा का कमरा है, यहाँ पर 5 बजे तक योग करना, उसके बाद उसी वो योग स्थिति में रहना, मुरली सुनना मैंने एकदम अव्यक्त तो सारा दिन मैं साक्षी होकर सब कारोबार करता था और 5 बजे फिर मैं जो है ना बाबा के पहाड़ी में चला जाता तो 5 से लेकर 8 बजे तक वहां होता था। जब अंधेरा हो जाता तो मैं आगे आ जाता था और सारा दिन एक तो 8 घंटा का जो भी चार्ट बढ़ाया ना। तो अभी हम कहते हैं ना जैसे बाबा कहते हैं शरीर से डिटेच होने का प्रसार तो करते कहाँ होते शरीर से, तो उस 8 घंटा जो मैंने वो चार्ट बनाया उससे रियल मुझे पता लगा आत्मा कैसे शरीर से न्याय होकर काम करती है, कैसे वो देखती है, कैसे वो करती है वो। और मैं सारे को साक्षी होके देखता था, कोई कुछ भी बोल रहा ना ठीक काम नहीं करा तो मैं साक्षी होके देखता था, देखो ये आत्मा देखो इसमें क्या क्या पार्ट भरा हुआ, देखो बड़ा विचित्र है, बड़ा मजा आता था साक्षी बन की स्थिति। तो उससे लगा कि हमें के शरीर से न्यारे होके क्या आनंद आता है, इसलिए बाबा कहता है साक्षी होके जो ना हर कार्य करो तो आनंद आएगा, खुशी होती है।
अभी आपका चार्ट कितने घंटे का हो गया, उसमें 8 का था अभी 18 का हो गया होगा,
अभी तो घट ही गया बढ़ा गई है। मतलब जब किसी चीज का अटेंशन होता है ना तो बनता है, फिर तो अभी तो ठीक है, अभी कहते चलो योग तो करते ही है ये भी। परंतु अटेंशन तो रहता है सारा दिन में जो ना, सारा वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ है संकल्प में के मेरे अंदर क्या संकल्प चल रहा है और आगे बढ़ने के लिए सचमुच अपने ऊपर अटेंशन और चेकिंग जरूरी है। अटेंशन रखें मेरे से कोई ऐसे कर्म नहीं हो और संकल्प को रीड करता रहता हूँ मैं, ये क्या है, ये मेरे अंदर शुरू से एक संकल्प चलता था कि मैं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं। अच्छा मैं कहता था कि ये क्या तेरे अंदर धुंध लगी रहती है आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं। तो ये बात जो ना बाबा ने अंडरलाइन कराया, जब बाबा से मिल रहा था तो बाबा ने दृष्टि कहा तो मेरे जो मैं संकल्प बाबा के को एक एक पास बाबा के पास पहुंचे, हमारे सब के फाइल बाबा के पास है, सब एक एक संकल्प बाबा के पास वहाँ पूरी फाइल भरी हुई हमारी है ना। अच्छा तो बाबा ने अंडरलाइन कहा कि बच्चे जो तेरे अंदर जो संकल्प है यही संकल्प तुझे आगे बढ़ाएगा और अच्छा पुरुषार्थ अच्छा है और यही संकल्प। फिर मुझे ध्यान आया ये भी कई बार क्या अपने गुणों का पता नहीं लगता हमको, तो ये तो अच्छी बात है ना मैं आगे बढ़ू, यानी अंदर धुन लगी रहता जैसे ना किसी बात के कोई धुन, मैं सोचता क्या तेरे अंदर ये धुन लगी रहता आगे बढ़ू आगे क्या है ये, अच्छा ना अपने आप को कोसता रहता था। तो बाबा ने अंडरलाइन कराया तो वाक्य ये सही बात है, तो इसलिए वर्तमान समय संकल्प मेरा अटेंशन रहता है मेरे कौन सा संकल्प।
प्रश्न है क्या अभी आपका वापस अपने स्वीट होम जाने का मन करता है या
है?
या इसी संसार में जीने का मन करता है? यदि यदि वापस शांतिधाम लौटने का मन करता है तो क्या आप इस संगम युग से उब गए हैं, और नहीं उब गए हैं तो वापस क्यों जाना चाहते हैं, कारण बताओ।
नहीं देखो सबको वापस जाने का था है ना, परंतु ये है कि मेरा ये संकल्प होता है कि आज मेरा अपने ऊपर चेकिंग होता है, आज मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जा सकती है, यह टेंशन रहता है। तो जाता कहीं तो फिर मैं उस पर ध्यान देता हूँ। मेरा जो लौकिक भाई है ना ये पठानकोट रोड में, हम चार भाई हम, मैं वहाँ वो समर्पित था, मैं उसके प्रति थोड़ा मेरा लगाव, फिर मैं सोचता है तो देह में फंस गया ना, फिर अपने आप को समझा था कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, जहाँ जाता है उसको मैं ड्रॉप करता हूँ वो मेरा चलता है। और बाकी रही शांति धाम जाने की तो वो तो कोई रो नहीं सकता है, हमारे कहने से तो हम न शरीर छोड़ सकते हैं और नहीं जा सकते, और वापस तो सबको बाबा वन वे ट्रैफिक है, जब तक ऊपर से खाली नहीं होगा तब तक ऊपर जा ही नहीं सकते, अभी तो ऊपर आत्मा ही है ना, वन वे ट्रैफिक है, जब ऊपर से खाली हो जाएगी बाबा अपने आप ही वापस ले जाएगा,
त्रिशंकु जैसी स्थिति बनी है अभी तक। लास्ट प्रश्न है, आप इस ग्रुप अथवा ब्राह्मणों की उन्नति के बारे में बताइए कि कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया जाए जो निरंतर इंद्रिय सुख और उड़ती कला का अनुभव होता रहे।
उसके लिए तो यही है, देखो इतना बड़ा संगठन है हमारा, तो हर एक का हिसाब किताब तो है ना, पूरे देखो हम ब्राह्मण जो भी भाई बहने हैं ना, हम अभी यहाँ हर एक एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं पूरे कल्प में। जैसे देखो मम्मा बाबा के आगे जो है ना आदि रतन दादियां देखो एकदम उनके नजदीक निकले ना सभी, तो वो दादियां पूरे कल्प में ना बाबा के इर्द गिर्द किसी न किसी संबंध में उनके आगे घूमेंगे। तो यहाँ पर हम जो संगठन परिवार है ना, हम भी एक दूसरे के इर्द गिर्द किसी न किसी संबंध से जरूर होते हैं, और हिसाब किताब हमारा आपस में है ये ना, क्योंकि लौकिक से तो हमारा छुटकारा हो गया, तो अलौकिकता में जो हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना। तो हिसाब किताब जब लेने में हमें मतलब एक कतराए नहीं है, तो देने में क्या हम कतराए। इसलिए ये सोचो कि चलो कोई भी बात आती है, आती आनी है, बाबा ने कहा ना बातें तो आएंगी, परंतु उनका काम है आना और हमारा काम है उनको भगाना। इसलिए कोई भी बात आती है आएगी, परंतु उसमें ना हर एक भाई ने मेरे साथ कुछ भी होता है किसी के द्वारा, तो उसमें गांठ नहीं बनानी चाहिए कि इसने ऐसे क्यों कहा, वही है कई बार जो इतने लंबे समय तक वो गांठ बनी रहती है। फिर एक ही बार प्रेशर कुकर के द्वारा, जैसे वो प्रेशर कुकर से बाहर आता ना, एक ही बार बम फूटता, फिर वो सारा सबर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी बात आती है, मेरा अपना ये अनुभव, कोई भी बात आती है सॉरी करके फिनिश कर दो, चलो कोई बात नहीं हमारा भाई है ना।
आप 68 ज्ञान में है तो बाबा से मिले ब्रह्मा।
मैं एक्चुअल ज्ञान में तो आ गया था, मेरी अभी जो ना गवर्नमेंट सभी जॉब लगी थी, तो मैंने कहा अगले साल जाएंगे, मुझे क्या पता बाबा अध्यक्ष हो जाए। हाँ पर ये था कि बाबा के लेटर कई आए, हमें बहुत लेटर आते थे बाबा के लाल, क्योंकि जो पोस्ट बहने भेजती थी ना, तो उसी में जो है ना सबका लेटर आता था, तो बाबा कठई जो है ना वो जवाब देता था। तो बाबा ने मैंने लेटर लिखा ना, तो जब 7 दिन का जब कोर्स किया ना, तो बहने पहले कहता निश्चय पत्र लिखो। मैंने कहा बहन जी क्या लिखना, कहता है वो जो आपको निश्चय लगा। तो मुझे पता है कि मैंने 4 पेज का लेटर लिखा जी, वो तो क्या लिखा उन्हें मुझे पता। एक बात याद आई है मुझे अभी भी कि मैंने कहा बाबा आपके घर में एक और बच्चे ने जन्म ले लिया है। बहन जी बड़ी खुशी करता, अच्छा ये तो बहुत बड़ी है बात लगी। तो जब मैंने लेटर लिखा तो बाबा ने कहा, बाबा जो ना हैंड राइटिंग से समझ आते थे, अरे कि ये बच्चा किस को आ रहे, बाबा की इतनी फर्क सकते हैंड राइटिंग से समझ आते। तो बाबा ने लिखा कि गोपी शेर का पत्र पाया दिल हर्षाया। और सच मुझे जो है ना ये 2 शब्द क्या नशा रहता था हमको, भक्ति हमने इतनी किया तो बाबा देखो रिटर्न करता है भी, देखो कितना प्यार करता है बाबा। और दूसरी बात यह सदा ये नशा रखो, जो भी मधुबन में, वैसे तो सभी है मधुबन वासे, परंतु जो समर्पित वाले हैं ना, वो 16108 जो माला है ना, वो राज घराने में जन्म लेगा।
पुरुषार्थ भी करना भी हमको यार,
नहीं नहीं पुरुषार्थ का वो नंबर वार तो होगा ना, है कि नहीं। ये देखो लोगे में एक साधारण पढ़ाई पढ़ता है और एक डिग्री लेता है, साधारण वाला भी अपने परिवार को चलाता है, और डिग्री वालों के पास सब साधन होते हैं, कार गाड़ी वगैरह, वो नशे में रहता है। इसी तरह है तो सही है, परंतु वहां पर जो है ना नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो होगा ना। तो ये नशा रखोगे हम राज कराने में, तो हमारे रहन सहन वैसे रॉयल हो जाए, ठीक। क्योंकि दैवी गुणों से रॉयलिटी आती है और आश्रय गुणों से रॉयलिटी नहीं आती है, अमर्यादा आती है। और जब रॉयल जो है ना दैवी गुण है, उससे हमारे रॉयलिटी आती है। जितने दैवी गुण हमारे अंदर आते हैं ना, हमारे रॉयलिटी ऑटोमेटिकली आती है।
आपकी लौकिक उम्र कितनी है, उम्र शरीर की उम्र?
उम्र क्या करना है, उम्र जो भी हो जाए।
हम आपसे उम्र लेंगे नहीं, आपको क्या बता ही दो।
मेरे जो है ना 61 रनिंग है इसमें,
61
ना 71 सॉरी।
उम्र भी भूल गए।
खुशी में सब कुछ भूल जाता है आदमी। आप भाइयों से शेयर करें, हमें बड़ी खुशी हुई है।
अरे कोई ऐसी बात बताओ जो इस प्रश्न वाले में नहीं है और आप बताना चाहते हैं, बताइए।
एक बात मैं डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब और हम ये सवेरे सवेरे घूमते थे, ऐसे घूमते थे मैं, पर मुझे पता नहीं था ये डॉक्टर साहब है। तो एक बार इंटरव्यू जो है होता ना, वो जो हॉलीवुड से इंटरव्यू लिया था सर, डॉक्टर साहब ने सुना होगा, तो ये मेरे पास आए, कहते है आपका इंटरव्यू सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। मैं अच्छा, तो मुझे तो पता नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा मैंने कहा शुक्रिया। अच्छा तो मैं जो ना घूम करके 6 बजे आता था, यहाँ से मूली लेता था जगन्नाथ भाई से, ये आके इधर बैठते थे। अच्छा तो वो जो अंग्रेज और उनकी क्लासें लेते थे, तो मुझे नहीं पता, मैं सोचता था कि ये इंडियन विदेशी हैं, तो इसलिए ये जो है अंग्रेजी का क्लास ले रहा है। अच्छा उसके बाद जो अंग्रेज चले गए, फिर भी ये क्लास रहे, तो मैं सोचता था ये तो अंग्रेज तो चले गए, तो यहीं वह भी है। फिर मैंने सोचा है कि ये जो आदिवासी यहाँ पर जो ना, ये आबू निवासी होंगे, चलो ठीक आदि आबू निवासी होंगे। अच्छा तो जब मेरी तबीयत खराब हुई ना, तो इनके पास आया तो बाहर लिखा था डॉक्टर सचिन। मैंने देखा मैं कि ये तो वही है, बाप रे मैं कहा डॉक्टर साहब, मैंने इनका कहा डॉक्टर साहब हम आपस में मिलते थे सर, मैं आपका तो परिचय ना, तो आप तो डॉक्टर निकले। कहता है मैं डॉक्टर नहीं लग रहा हूँ क्या? मैं क्या लगता है? कहता है मेरी डॉक्टरों की पर्सनैलिटी नहीं, मैं क्या पर्सनैलिटी तो है, देखो आप इतने को क्लास कराते हैं, आध्यात्मिक पर्सनैलिटी भी है और दुनिया भी पर्सन, आपके पास तो डबल पर्सन है, हमारे पास तो एक ही पर्सनैलिटी है। तो इसलिए ये गुप्त, मैंने कहा आप तो पहुंच गया ना, छुपे हुए रुस्तम निकले आप तो। इसलिए हमें डॉक्टर साहब के जो है ना बाबा ने कहते हैं, कई बार हम पुराने कहते हैं, हम तो पुराने हैं, पर इस नशे में नहीं रहना चाहिए। आज के जो जनरेशन है ना, पढ़ी लिखी है, बड़ी इंटेलिजेंट है, और डॉक्टर साहब देखो मुरली ऐसे पढ़ते नहीं है, घोड़ते हैं और उसे भी घुटवाते रहते हैं, है ना, एक एक लाइन घोड़ते, तो हमको बड़ी खुशी होती है। आप सब भाई बहने जो है ना, डॉक्टर साहब की जो है ना ये मेहनत है, आप सब भाई बहने इकट्ठे होते हैं और
अंतिम प्रश्न।
एक दिन बहन जी ने कहा कि आप भी आया करो, आके दोनों डॉक्टर साहब ने हमको खींच ही लिया यहाँ पर।
तो अभी यहाँ आना आपको अच्छा लगा?
बहुत बढ़िया।
तो कल से आएंगे दिल्ली?
हाँ। वैदा नहीं करूंगा, तो कोशिश करूंगा मैं आने की।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो ये बहुत बड़ी युक्ति है।
हाँ वो तो सही बात है, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। हमारे आदरणीय गोपी भाई जी हम सभी के बीच पधारे, ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और अपने लौकिक अलौकिक जीवन में आने वाली समस्याओं का कैसे आपने सामना किया एक बहादुरी के साथ, शेर दिल बन करके, वो भी हम सभी के सामने रखा कि कैसे दृढ़ता के साथ आप हर समस्या का समाधान करते हैं, और इतने बड़े संगठन में रहते हुए हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए अपनी स्थिति को भी कायम रखते हैं, और दूसरी आत्माओं के प्रति भी अपनी भावनाओं को हमेशा श्रेष्ठ रखते हैं। तो ऐसे अनुभवों को सुन करके हम सभी बहुत बहुत गदगद हुए, और हम भी चाहेंगे कि ऐसी बातें सुन करके उन पर मंथन चिंतन करके अपने आप को भी ऐसा योग्य बनाएंगे, और हम भाई साहब का यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।